प्रिय श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए अपने जीवन में आनंदित हैं और फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों यशाया नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने अध्याय 25 में परमेश्वर की स्तुति के गीत को देखा है और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 26 में भी एक गीत है, परंतु वह आज का नहीं है। तो मित्रों, इससे पहले कि अब हम आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और इस अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो आपके वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें। इतना ही नहीं, हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार है, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार के दबाव में हैं। पिताजी, आप उनकी भी सहायता करें ताकि प्रत्येक जीवन आपके वचन के द्वारा आशीषों को प्राप्त कर सके। इस समय आप हम सब से बोले और बातचीत करें। धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और यशाया की पुस्तक 26 अध्याय से अध्ययन को आरंभ करेंगे जिसका विषय है प्रभु का राज्य। यशाया 26 अध्याय उसके एक पद में लिखा है, उस समय यहूदा देश में से यह गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वह उसकी शहरपनाह और गढ़ को नियुक्त करता है। यह उनका भविष्य है। उस समय यह गीत यहूदा में गाया जाएगा। आज वे यह गीत नहीं गा रहे हैं, यह तो स्पष्ट है कि आज इसराइलियों का स्वदेश लौटना भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं है। मेरे मित्रों, हम पढ़ते हैं यशाया 26 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ। मुझे संदेह है कि आप और मैं क्या प्रभु यीशु की संगति की महान आवश्यकता को समझते हैं। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में वधु कहती है, एक अध्याय उसके 2 पद में, वह अपने मुंह के चुंबन से मुझे चूमे। यह क्षमा, शांति और उत्साह का चुंबन है। अब जब वधु यह जान लेती है कि वह जिस ऊंचाई तक जाना चाहती है वहां तक नहीं पहुंच सकती, तो कहती है श्रेष्ठ गीत 1 अध्याय के 4 पद में, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। मेरे मित्रों, यशाया यहां इसी विचार को प्रकट कर रहा है जब वह कहता है, रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूं। जी हां, क्या हम में परमेश्वर के लिए ऐसा उत्साह है? आज झूठे प्रेम और आत्मिकता के अल्प ज्ञान की बहुत चर्चा है। मैं मनुष्यों की पवित्रता का स्वांग और धार्मिक शब्दावली बहुत सुनता हूँ। ओह, मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ और उसकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं सुन सुनकर इन बातों को थक चुका हूँ। मेरे मित्रों, जब आप रात में बिस्तर पर लेट जाते हैं, तब क्या आपने या आप अपने मन में परमेश्वर के लिए मनोवेश उत्पन्न करते हैं? क्या कभी आपके मन में परमेश्वर के लिए मनोवेग उत्पन्न होता है? क्या आप कह सकते हैं कि प्रभु मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा? प्रभु राज में वे कहेंगे, रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूं, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है। मेरे प्रियो, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं अनेक बार देखता हूं कि मैं परमेश्वर से दूर भाग रहा हूं, मैं उससे आगे भागता हूं, उसकी इच्छा के बाहर हो जाता हूं, और तब तनाव उत्पन्न होने लगता है। मैं निराश होकर कहता हूं, ओह, मैंने प्रभु का साथ छोड़ दिया है, मैं उससे दूर हो गया हूं, मैं उसके निकट नहीं हूं। मैं आज परमेश्वर को पुकारने वाले अधिक मनुष्य को नहीं देखता हूं। मैं आलोचना तो नहीं करता, परंतु मैं सच में कहता हूं कि ऐसे मनुष्य नहीं देखता। परंतु जब मुझे यह बोध होता है, तब यह मेरे मन को एक महान आशीष देता है। यशाया के पुस्तक 26 अध्याय के 16 पद में लिखा है, हे यहोवा, दुख में वे तुझे स्मरण करते थे, जब तू उन्हें ताड़ना देता था, तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रकट करते थे। ध्यान दीजिए, पूर्व काल में बचे हुए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, जो बंधुआई में जाने से बच गए थे वे लोग, और अब वे उन कठिन दिनों की ओर मुड़कर देख रहे हैं। यशाया 26 अध्याय के 17 पद में लिखा है, जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय ऐंठती और पीड़ा के कारण चिल्ला उठती है, हम लोग भी हे यहोवा तेरे सामने वैसे ही हो गए हैं। मेरे मित्रों, महाक्लेश के समय इसराइल एक स्त्री की तरह प्रसव पीड़ा में था, उनका कष्ट असहनीय था। यशाया अब उस समय का ध्यान करता है, जबकि यह भविष्य का समय है, उसने समय के पार को देखा है। आगे हम पढ़ते हैं यशाया 26 उसके 18 पद में, हम भी गर्भवती हुए, हम भी ऐंठे, हमने मानव वायु ही को जन्म दिया, हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया, और न जगत के रहने वाले उत्पन्न हुए। हमने मानव वायु ही को जन्म दिया, अर्थात हमने व्यर्थ ही कष्ट भोगे। उस समय दुष्टों का मन परिवर्तन नहीं हुआ, वे स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा करते रहे। मेरे मित्रों, आज प्रसव पीड़ा जैसा कष्ट आप भोगते हैं, तो या तो परिणाम अर्थपूर्ण होता है या व्यर्थ हवा ही होता है। मुझे खेद है कि हम में से अधिकांश ने व्यर्थ ही कष्ट उठाया है, क्योंकि हम देखते नहीं कि सब परमेश्वर की महिमा के निमित्त होता है। यहां आपको स्मरण रखना है कि यशाया प्रभु राज्य के बारे में कह रहा है। यदि हम उसकी खोज में शीघ्र ही लग जाएं, तो हम प्रभु राज्य कैसे माहौल में होंगे। यशाया अध्याय 26 के 19 पद में लिखा हुआ है, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे, हे मिट्टी में बसने वालों, जाकर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है, और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। मेरे प्रिय मित्रों, यहां पर परमेश्वर के राज्य के बारे हमें बताया जा रहा है। अध्याय 27 जो भावी प्रभु राज के तीन गुना गीत के साथ समाप्त होता है, जो अध्याय 25 से 27 में है। मेरे मित्रों, हम यहां पर देखते हैं कि अध्याय 26 भी यहां पर समाप्त होता है, और अब हम अपने अध्ययन में आगे देखते हैं अध्याय 27 में, जो दाख की बारी का गीत है। आइए हम पढ़ें यशाया 27 अध्याय उसका 1 पद, उस समय यहोवा अपनी कड़ी बड़ी और दृढ़ तलवार से लिव्यातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। ध्यान दीजिए, उस समय अर्थात भविष्य में अर्थात प्रभु के दिन, वह दिन इसराइल के दिन के समान शाम को आरंभ होता है। यह महाक्लेश का समय प्रभु राज तक जाएगा। मेरा अपना विचार तो यह है कि प्रभु का दिन अनंत काल तक जाएगा और उसका सूर्यास्त कभी नहीं होगा। यहोवा अपनी कड़ी, बड़ी और दृढ़ तलवार। प्रभु की तलवार परमेश्वर का वचन है। प्रभु के आगमन का वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1:16 में इस प्रकार से है, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकली थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। मेरे मित्रों, उस तलवार से वह जाति जाति पर वार करेगा। जो प्रभु राज्य को नहीं मानता वह कहेगा, आपने कहा कि आप बाइबल की बातों को ज्यों का त्यों स्वीकार करते हैं, क्या यह वास्तव में तलवार है? मैंने देखा है कि जीभ में बहुत तेज धार होती है। इब्रानियों के पत्री 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। अतः मैं मानता हूं कि यह परमेश्वर का वचन है। उसे केवल वचन का उच्चारण करना होगा। उसने अपने वचन के द्वारा सृजन कार्य किया अर्थात सृष्टि को बनाया और अपने वचन ही के द्वारा दंड भी देगा। मेरे प्रियो, वह किसको दंड देगा? लिव्यातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा। उस समय प्रभु राज के आरंभ में प्रभु यीशु लिव्यातान अर्थात शैतान को दंड देगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20:1-3 में लिखा है कि शैतान 1,000 वर्ष के लिए अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 12:9 में लिखा है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलिस और शैतान कहलाता है और सारे जगत का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए हैं। अय्यूब की पुस्तक 41:15 में उसके बारे में लिखा है, उसके छिलकों की रेखाएं घमंड का कारण है, छिलके उसके सुरक्षा के लिए हैं। इस कारण शैतान सोचता है कि वह अमेघ है, कोई उसे छू नहीं सकता। यह उसका घमंड है। मेरे प्रियो, मैं जहां तक सोचता हूं कि वह आज भी यही सोचता है कि उसे दंड नहीं मिलेगा, उसे कोई दंड नहीं दे सकता है। उसके विचार में वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दंड के परे है अर्थात परमेश्वर उसे दंड नहीं दे सकता। आज अनेक लोग सोचते हैं कि दंड दिया नहीं जाएगा, वे तो दंड के विचार भी सुनकर के हंसते हैं। यह शैतान की मानसिकता है। एफ डेलिर्च का सुझाव है, वेग और टेढ़ा चलने वाला सर्प टाइग्रिस नदी अर्थात अश्शूरों का प्रतीक है और टेढ़ा सर्प फरात नदी का प्रतीक है, अतः यह बेबीलोन है। जो अजगर समुद्र में रहता है नील नदी का प्रतीक है, अतः वह मिस्र देश है। ये देश शैतान का विरोध नहीं करेंगे परंतु उसका अर्थ पूरा करेंगे, क्योंकि शैतान इन राष्ट्रों के पीछे रहने वाली शक्ति है। यशाया 27:2 में लिखा हुआ है, उस समय एक सुंदर दाख की बारी होगी, तुम उसका यश गाना। यह पद एक प्रश्न खड़ा करती है जिसका आंशिक उत्तर तो यशाया की पुस्तक में दिया गया है। परमेश्वर इसराइल को अन्य जातियों से अधिक दंड क्यों देता है? ज्योति उत्तरदायित्व उत्पन्न करती है उस तथ्य के आधार पर कि इसराइल को अधिक प्रकाशन प्राप्त था, उसके पाप अधिक प्रकट थे और उसका दंड भी अधिक था। उसे उसके अत्याचारी राष्ट्रों से अधिक कोड़े खाने पड़े। हम आमोस की पुस्तक 3:2 में भी पढ़ते हैं, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। जी हाँ, उसका दंड तो अत्यधिक कठोर था, परंतु परमेश्वर ने इसराइल को अन्य राष्ट्रों की तरह सदा के लिए नष्ट नहीं किया। भजन संहिता 118 उसके 18 में लिखा है, परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया है। परमेश्वर इसराइल के सर्वनाश की अनुमति कभी नहीं देगा। यशाया के पुस्तक 27 अध्याय उसके 9 पद में लिखा हुआ है, इससे याकूब के अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा और उसके पाप के दूर होने का प्रतिफल यह होगा कि वे वेदी के सब पत्थरों को चूना बनाने के पत्थरों के समान चकनाचूर करेंगे और अशेरा और सूर्य की प्रतिमाएं भी फिर खड़ी न रहेंगी। पाप के कष्टों के कारण इसराइल का मेल परमेश्वर से नहीं हुआ था। याकूब का पाप लहू के द्वारा धोया गया था और अन्य जातियों का पाप प्रभु यीशु के लहू के द्वारा पश्चाताप हेतु स्वीकार किया गया। जिस प्रकार आप पापी होकर बचाए गए, उसी प्रकार उस समय भी होगा। वे जो कहते हैं कि परमेश्वर ने इसराइल को त्याग दिया है, वे धर्मशास्त्र के इन पदों को नहीं पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, हम यशाया 27 अध्याय उसके 10 और 11 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि गढ़ वाला नगर निर्जन हुआ है, वह छोड़ी हुई बस्ती के समान निर्जन और जंगल हो गया है। वहां बछड़े चरेंगे और वहीं बैठेंगे और पेड़ों की डालियों की फुनगी को खा लेंगे। जब उसकी शाखाएं सूख जाएं, तब तोड़ी जाएंगी और स्त्रियां आकर उनको तोड़कर जला देंगी, क्योंकि ये लोग निर्बुद्धि हैं, इसलिए उनका कर्ता उन पर दया न करेगा और उनका रचने वाला उन पर अनुग्रह न करेगा। ध्यान दीजिए, इसराइल के नगर उसी प्रकार नष्ट होंगे जिस प्रकार परमेश्वर से रहित मनुष्यों के नगर नष्ट किए जाते हैं। संसार के महान विनाश सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दंड का परिणाम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्योति का त्याग किया था। उन्होंने ज्योति का ही नहीं, परमेश्वर के पुत्र के मनुष्यत्व का भी त्याग किया है। यशाया की पुस्तक 27 अध्याय उसके 12 और 13 पद में लिखा है, उस समय यहोवा महानद से लेकर मिस्र के नाले तक अपने अन्न को फटकेगा और हे इसराइलियों, तुम एक एक करके इकट्ठे किए जाओगे। उस समय बड़ा नरसिंगा फूंका जाएगा और जो अश्शूर देश में नष्ट हो रहे थे और जो मिस्र देश में बरबस बसाए हुए थे, वे यरूशलेम में आकर पवित्र पर्वत पर यहोवा को दंडवत करेंगे। मेरे मित्रों, इन पदों से स्पष्ट होता है कि परमेश्वर इसराइल को निश्चय ही स्वदेश लौटा लाने की इच्छा रखता है, परंतु जो इसे स्वीकार नहीं करते, मैं उनके साथ विवाद भी नहीं करता हूं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं, मुख्य बात यह नहीं कि इसराइल का स्वदेश में पुनः स्थापन होगा, मुख्य बात तो यह है कि आप परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं या नहीं। यदि आप परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, तो आप इस प्रकार के पदों के साथ क्या करेंगे? आप इसे आत्मिक परिप्रेक्ष्य प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि यशाया यहां अश्शूर, मिस्र, इसराइल और यरूशलेम के विषय चर्चा करता है और ये वास्तविक स्थान है और इसराइल का पुनरुद्वार भी वास्तविक होगा। यदि आप धर्मशास्त्र को परमेश्वर प्रेरित वचन मानते हैं, तो परमेश्वर जो कहता है आप उस पर विश्वास करें। जी हाँ, यह भविष्यवाणी तो अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसका पूरा होना भावी घटना है। मेरे मित्रों, जब परमेश्वर यहूदियों को स्वदेश लौटा कर लाएगा, तब वे उसकी आराधना करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे उसने आपको और मुझे बुलाया है। वह उनको भी बुलाएगा। आज वे इस वचन का पूरा होना नहीं देखते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर अध्याय 27 समाप्त होता है। हम आगे बढ़ेंगे और अध्याय 28 में देखेंगे, जिसका विषय है अश्शूरों द्वारा एप्रेम पर आक्रमण, भावी घटना और यरूशलेम को चेतावनी। यह अध्याय एक पूर्ण रूप से नया भाग है। भविष्य के संबंध में की गई भविष्यवाणियां अध्याय 24 से 27 में थी। अध्याय 28 से 35 में हमारे पास जो भविष्यवाणियां हैं वे स्थानीय परिस्थितियों की हैं और पूरी भी हो चुकी हैं, परंतु कुछ भविष्यवाणियां दूरस्थ भविष्य की हैं और पिछले अध्यायों के समान उसी युग की हैं। यह नया अंश 6 हाय का है और हर्मगिदोन के युद्ध में पूरा होता है, जो अध्याय 34 में व्यक्त किया गया है। इसके बाद अध्याय 35 में प्रभु राज्य के सांसारिक लाभों की चर्चा की गई है। तो मेरे मित्रों, यह अध्याय निकट भविष्य और दूरस्थ भविष्य का, अतीत की और भविष्य की घटनाओं का स्थानीय और तत्कालिक तथा सामान्य और दूरस्थ भविष्यवाणियों का अति उत्तम उदाहरण है। हम उन भविष्यवाणियों को देखेंगे जो पूरी हो गई हैं और जो अभी पूरी होना बाकी है। इसराइल का उत्तरी राज्य, जिसे एप्रेम कहा गया है, वह शीघ्र ही अश्शूरों द्वारा दास बना लिया जाएगा। यह एक भावी घटना है, परंतु यहूदा राज्य के लिए कठोर चेतावनी है। इसका एक भाग उस समय पूरा हो गया था जब अश्शूरी सलमनेसर ने 721 ईस्वी पूर्व में इसराइल पर आक्रमण किया और उन्हें बंदी बनाकर ले गया था। एप्रेम का शीघ्र ही बंदी बनाया जाना पहली हाय उत्तरी राज्य पर हुआ है। तो आइए हम देखें, यशाया 28 अध्याय उसके एक पद में लिखा है, घमंड के मुकुट पर हाय जो एप्रेम के मत वालों का है, और उनकी भड़कीली सुंदरता पर जो मुरझाने वाला फूल है, जो अति उपजाऊ तराई के सिरे पर दाख मधु से मत वालों की है। मेरे प्रियो, एप्रेम या इसराइल 10 गोत्र थे जो अलग हो गए थे। इन्हें सामरिया भी कहते हैं। यहां शराबियों का जो चित्रण है वह वास्तविक भी है और आत्मिक रूप में भी है। वे आत्मिक समझ के क्षेत्र में भी अचेत थे। आत्मिक परिप्रेक्ष्य में मतवाले होने का अर्थ है घमंड से भरे होना। यशाया 28 अध्याय के 2 पद में लिखा है, देखो प्रभु के पास एक बलवंत और सामर्थी है जो ओले की वर्षा या उजाड़ने वाली आंधी या बाढ़ की प्रचंड धार के समान है, वह उसको कठोरता से भूमि पर गिरा देगा। यहां अश्शूरों को बलवंत और सामर्थी, उजाड़ने वाली आंधी और बाढ़ की प्रचंड धारा कहा गया है। हम आगे देखते हैं यशाया 28 उसके 3 पद में, एप्रेमी मतवालों के घमंड का मुकुट पांव से लताड़ा जाएगा। मेरे मित्रों, आपको यह अच्छा नहीं लगेगा, परंतु परमेश्वर नहीं पछताएगा। वह साफ साफ कहता है कि उसने यह किया है। भविष्यद्वक्ता एक शराबी के भविष्य की चर्चा करता है। उत्तरी राज्य में समृद्धि अर्थात घरों में, बगीचों में और वृक्षारोपण में उनकी सुंदरता दिखाई देती थी। उनकी सभ्यता विकसित हो चुकी थी। यदि आप सामरिया के पहाड़ों पर जाएं, तो वहां आज भी ओमरी और आहाब द्वारा निर्मित राजमहल देखेंगे, जिसमें आहाब और रानी इजेबेल रहते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर दुष्ट को और धनवान को रहने के लिए सर्वोत्तम स्थान देता है, परंतु आने वाले संसार में दुष्ट और धनवान के लिए अच्छा समय नहीं होगा। अतः उन्हें यहां सब अच्छा मिल रहा है। सामरिया का पहाड़ उस क्षेत्र का सबसे अधिक रमणीय स्थान है। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि आप वहां पर खड़ा होकर के भूमध्य सागर को देख सकते हैं, यर्दन की तराई देख सकते हैं, और उत्तर में हर्मन पर्वत था जिस पर बर्फ जमी हुई है। जी हाँ, दक्षिण में यरूशलेम के शहर पना है। मेरे मित्रों, रहने के लिए इससे अधिक मनोहर स्थान आपको कहीं नहीं मिलेगा। यदि कोई वहां प्लॉट बेचे तो शायद मैं भी वहां पर लेना चाहूंगा, परंतु पैसे का अभाव है। परंतु हर एक व्यक्ति अपना एक छोटा सा घर बनाना चाहता है। परमेश्वर ने उस सुंदर स्थान के निवासियों को दंड दिया, उसने उनकी महान सभ्यता को भी नष्ट कर दिया। मेरे प्रिय मित्रों, यदि हम अपने घमंड में बने रहें तो निश्चय ही हम अपने घमंड के द्वारा नाश किए जाएंगे, जैसा कि परमेश्वर ने यहां पर किया है। आज मैं आपके जीवन के बारे में नहीं जानता कि आपके जीवन में किस प्रकार के घमंड पाए जाते हैं। यदि कुछ घमंड है आपके जीवन में जो आपको विनाश की ओर ले जा रही है, तो क्यों ना आज हम यहीं पर रुककर अपने जीवन पर विचार करें और कहें कि प्रभु, मैं नाश होना नहीं चाहता हूं, मैं आपकी निकटता में आना चाहता हूं। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूं कि आज आप एक सही निर्णय के द्वारा अपने जीवन में उन आत्मिक आशीषों को ग्रहण करेंगे जिसे परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहते हैं। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
चाहूं मैं तुझको दिल से खुदा, संग तेरे गुजरे हर पल मेरा।